अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आइए भक्तों, आज बाबा की प्रकृति के बारे में जानें। वैसे तो बाबा सभी यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे, खास करके छह प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण जानकार थे। इन क्रियाओं में धौती योग और खंड योग एवं समाधि इत्यादि भी सम्मिलित हैं। आइए आज हम बाबा के द्वारा की गई धौती क्रिया और खंड योग के बारे में थोड़ी सी बातें जानें।
ओम साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर भोले साई शिवाय।
धौती क्रिया अर्थात पेट के अंदर की आंतों को स्वच्छ करने की क्रिया। बाबा प्रति तीसरे दिन मस्जिद से थोड़ी दूर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे इस क्रिया को। एक अवसर पर कुछ लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को पेट से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के पेड़ पर सूखने के लिए रख दिया। जानते हैं, शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी तक जीवित थे। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धौती क्रिया जो होती है वो एक 3 फीट चौड़े एवं 22.5 फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो ये धौती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी।
ओम साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर भोले साई शिवाय।
दूसरी क्रिया खंड योग। एक समय की बात है, बाबा ने अपने शरीर के अंगों को अलग अलग करके मस्जिद के अलग अलग स्थानों में बिखेर दिया। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में आए और बाबा के अंगों को इस प्रकार यहां वहां बिखरा देखकर बहुत ही डर गए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौट जाएं और गांव के अधिकारी को यह बताएं कि किसी ने बाबा का खून करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है यह सोचकर वे चुप रहे। आश्चर्य, महान आश्चर्य, दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत हृष्ट पृष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वो कहीं स्वप्न तो नहीं था, ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था।
साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर भोले साई शिवाय।
साई शिवाय,
साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर भोले साई शिवाय,
साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर भोले साई शिवाय,
ओम साई शिवाय, ओम साई शिवाय, हर हर
मित्रों, गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप ही हमें उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय जिस आनंद व सुख का अनुभव हो रहा है उसका वर्णन हम किस प्रकार करें। अरे यथार्थ में तो बाबा अखंड सच्चिदानंद थे, उनकी महानता और अद्वितीयता का बखान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षु जन भी साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते, फिरते, उठते, बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्त रंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे, सदा शांत और स्थिर रहते थे। परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे, बहुत गुस्सा करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। हकीकत में कोई भी अंत तक ये न जान पाया कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। कुछ लोगों ने कहा कि वो मुसलमान थे और कुछ ने कहा कि वो हिंदू थे। यदि हम ये कहें कि वे मुसलमान थे तो उनके कान हिंदुओं की रीति की तरह छिदे हुए क्यों थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुन्नता कराने के पक्ष में थे। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करें तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि मुसलमान कहें तो वे सदा वहां धूनी प्रज्वलित रखते थे, तथा दूसरे काम जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध हैं, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कर्म करना, अन्नदान और अर्घ द्वारा पूजन आदि, सदैव वहां चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन करके सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे।
मस्जिद में हो राम की पूजा, ऐसा कर दिखलाया,
ऐसा कर दिखलाया साईं, ऐसा कर दिखलाया।
मंदिर में भी अल्लाह का तूने पाठ पढ़ाया,
तूने पाठ पढ़ाया साईं, तूने पाठ पढ़ाया।
मस्जिद में हो राम की पूजा, ऐसा कर दिखलाया, मंदिर में भी अल्लाह का तूने पाठ पढ़ाया। मुझको भी दे ऐसी भक्ति, हो मुझको भी दे ऐसी भक्ति, मैं तेरे गुण गाऊं, चल 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 रे तुझे शिरडी धाम दिखाऊं,
चल 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 रे तुझे शिरडी धाम दिखाऊं।
अरे जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया। वे उनके दर्शन से ही इतने मोहित हो गए कि सब कुछ भूल गए। अस्तु इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। और इसमें आश्चर्य ही क्या है, जो अहम व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है, तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसकी कोई जाति पांति नहीं रह जाती। और इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली को सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रता पूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई भी आपत्ति नहीं की। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के सब छुपे हुए व्यापार को पूर्ण रूप से जानते थे, और जब कभी वे उनके छुपे हुए रहस्य उनके समक्ष स्पष्ट करते तो सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। बाबा स्वयं ज्ञानावतार होकर भी सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी, अर्थात उन्हें आदर सत्कार बिल्कुल रुचिकर नहीं था। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें पर ब्रह्म ही मानते थे। भक्तों, हम कितने भाग्यशाली हैं कि जब साईं सदगुरु ही हमारी नाव की खेवैया हैं, तो वे निश्चय ही कुशलता और सरलता से इस भवसागर के पार उतार देंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।
साईं की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी, बाबा की तस्वीर मैं ऐसी बनाऊंगी, तस्वीर में ऐसी बनाऊंगी, बाबा की तस्वीर में ऐसी बनाऊंगी, जैसे बैठे शिरडी में वैसी दिखलाऊंगी। साईं की तस्वीर में ऐसी बनाऊंगी, जैसे बैठे शिरडी में वैसी दिखलाऊंगी। साईं की तस्वीर में ऐसी बनाऊंगी, हो हो
तस्वीर में ऐसी बनाऊंगी, हो